समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेनु कटारिया। रेनु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 23rd ऑफ मार्च। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज फर्स्ट मुकेश।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें वर्तमान स्थिति और मौजूदा तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी ना हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से कार्य करेगा। उन्होंने क्षेत्रीय समूहों को सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के साथ काम करने का निर्देश दिया।
Air India and Air India Express will operate a total of 30 scheduled and non-scheduled flights to and from West Asia today, even as services on several routes remain limited. Both carriers will continue their scheduled operations to Jeddah with a total of 10 flights between India and the Saudi Arabian city. Air India will operate one return service each from Delhi and Mumbai, while Air India Express will run services from Bengaluru, Kozhikode and Mangaluru. Apart from Jeddah, Air India Express will operate four scheduled flights to and from Muscat, including services from Delhi and Mumbai. It will also operate four scheduled flights to and from Riyadh, from Bengaluru and Kozhikode.
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगी। इसका उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। वित्त विधेयक 2026 भी आज सदन की कार्यसूची में है। राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए के सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों और इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करना है। दूसरा विनियोग विधेयक 2026 भी आज सदन के कामकाज की सूची में विचार के लिए शामिल है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy will launch the seventh tranche of auction of critical and strategic mineral blocks today. The seventh tranche will offer 19 blocks across several states under mining lease and composite license. Ministry of Mines said that auction will be conducted online through a transparent two-stage ascending toward a forward auction process, wherein the successful bidder will be selected based on the highest percentage of value of mineral dispatched quoted.
असम, केरलम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी। 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराया जाएगा। सभी चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी।
मेरा युवा माय भारत विल ऑर्गेनाइज अ नेशन वाइड पद यात्रा टुडे मार्किंग द शहीद दिवस। द इनिशिएटिव विल बी कंडक्टेड अंडर द थीम माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पद यात्रा विल बी अ ट्रिब्यूट टू द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियाज यंग फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सेड दैट द पद यात्राज विल बी ऑर्गेनाइज अक्रॉस ऑल 763 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विद अ मेजर इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज इन फरीदाबाद हरियाणा विद पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 10,000 यूथ।
आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में हम छत्तीसगढ़ राज्य से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बुधरी टाटी से बातचीत करेंगे। डॉक्टर बुधरी टाटी को सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है। बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहाँ तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले। उस समय उनके पास पैसा नहीं होता, तब 50 रुपए में हमने खाता खोले। हजारों बहनें अनविज्ञता कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है।
ये पॉडकास्ट आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जाएगा। इसे आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज भविष्य की सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में जल संरक्षण के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर रात 9:30 से प्रसारित होगा। श्रोता कार्यक्रम से संबंधित विषय पर अपने प्रश्न हमारे टेलीफोन नंबर 011-2371-7118, 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स हैंडल #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
The inaugural Sikkim International Film Festival concluded at Gangtok last evening. A total of 40 films and documentaries were showcased during the 4-day-long festival, which saw the presence of prominent personalities from Bollywood and regional film industries. The festival was organized by the Information and Public Relations Department with support from the Ministry of Information and Broadcasting and the National Film Development Corporation.
छत्तीसगढ़ राज्य खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये भारत सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत ऐतिहासिक उपलब्धि है। बुधवार से शुरू हो रहे ये खेल रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किए जाएंगे। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इन खेलों में 2,300 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। इन खेलों में 2 श्रेणियों में कुल 9 खेल स्पर्धाएं शामिल हैं। खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती और मलखंब तथा कबड्डी शामिल हैं।
India delivered an exceptional performance at the Spanish Para Badminton International 2026 led by Paralympic champion Pramod Bhagat and Sukant Kadam. Paralympic champion Pramod Bhagat won 2 golds and a silver, including a thrilling men's singles SL3 victory over Nitesh Kumar. Sukant Kadam added a gold in men's singles SL4 and a silver in men's doubles with Bhagat. Other medalists included Nitesh Kumar, Jagdish Dili, Neeraj Deep, Ranjan Bisoi and Kuldeep Mahakul, and mixed doubles pairs Shivam Yadav and Neeraj, Nitesh Kumar, Amit Tulsamathi, Murugesan.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले रेनू आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार हैं आपके
पास? जी बिल्कुल, In Chennai, the Central Goods and Services Tax Department and Central Excise for Tamil Nadu and Puducherry have activated a strict enforcement system to ensure fair elections. A 24/7 control room has been set up along with nodal officers, flying squads and surveillance teams. Authorities are monitoring roads, warehouses and public venues to prevent the distribution and movement of goods meant to influence voters. And Mukesh, let us have some news from Delhi Metro.
हाँ, दिल्ली से पहले हम बम्बई चलते हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल उत्तरी मुंबई में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी। आवास, जलापूर्ति, सड़कों, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सुविधाओं से संबंधित 16 मुद्दे उठाए गए। कुछ समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया जबकि अन्य को तत्काल कार्रवाई के लिए भेजा गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नवी मुंबई में जलवायु कार्यकर्ताओं ने जल परीक्षणों के बाद आर्द्र भूमि आपातकाल का मुद्दा उठाया, जिसमें पता चला कि नेरुल में स्थित 3 महत्वपूर्ण फ्लेमिंगो आवास स्थल डीपीएस, एनआरआई और टीएस चाणक्य झीलें अत्यधिक प्रदूषित हो गई हैं। ये झीलें ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य का समर्थन करती हैं, जो फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि मुंबई में मॉनसून से निपटने के लिए पूरे शहर में 144 करोड़ रुपए की लागत से 547 जल निकासी पंप लगाए जाएंगे। पश्चिमी उपनगरों में सबसे अधिक पंप लगाए जाएंगे, इसके बाद पूर्वी उपनगरों में और द्वीप शहर शामिल हैं। ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं और पिछले वर्ष की भारी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है।
I have two news from Bengaluru Metro, Mukesh. तो पहली वाली न्यूज पढ़ते हैं। In Bengaluru, the Karnataka government reported a 4.11% drop in pollution levels between 2019 and 2025 with a slight improvement in air quality. This has been credited to a 44-point action plan focusing on reducing vehicle emissions, better waste management and promoting electric vehicles. Over the past 3 years, nearly 6 lakh vehicles were inspected with around 70,000 violations recorded. Retrofitment centers have also been set up to encourage cleaner fuel alternatives and steps were taken to increase green cover and control dust. Another news, the Karnataka government has also taken steps to address summer drinking water shortages in rural areas. Minister Priyank Kharge said, districts have been asked to closely monitor the situation, set up 24/7 control rooms and deploy rapid response teams. Officials have been instructed to check water sources and prevent contamination to ensure continuous supply.
और अब रुख करते हैं कोलकाता महानगर का। कोलकाता में विधानसभा चुनावों से पहले 35 लाख से अधिक अवैध प्रचार सामग्री हटाई गई है। अधिकारियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकने के लिए 181 करोड़ रुपए से अधिक की जो रकम है वो बरामद की है। और इस बीच निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कल कोलकाता में बताया कि सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। सूची प्रकाशित होने के बाद यदि मतदाताओं को कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन ईसीआई नेट ऐप या आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या जिला मजिस्ट्रेट और उप विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो, Governor Shiv Pratap Shukla and First Lady Janaki Shukla hosted a vibrant celebration of Bihar Foundation Day at Lok Bhavan, Hyderabad yesterday. The event held under the Ek Bharat Shreshth Bharat initiative honored the 114th anniversary of Bihar's creation from the Bengal Presidency in 1912. In his address, the governor lauded Bihar as the cradle of Indian civilization, citing the intellectual legacy of Nalanda University and the spiritual significance of Bodh Gaya. He emphasized that Bihar's contributions to India's political and cultural fabric remain indispensable.
और रेनु, अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है। सत्र 25 तारीख तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्त ने सत्र के दूसरे भाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। सत्र के आरंभ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खीर समारोह में भाग लेंगे और दिल्ली की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी। सत्र के आरंभ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूर्ण गायन भी किया जाएगा। और दिल्ली मेट्रो को लंदन में ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में बेहतर यात्री सुविधा और उन्नत स्मार्ट टिकटिंग के लिए 2 कांस्य पदक मिले हैं। इसके अलावा राजधानी में टेलीकॉम पुरस्कार समारोह में वर्ष के सर्वोत्तम फाइबर परिनियोजन नेटवर्क के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के एकीकरण से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एकीकृत कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मॉडल पर एक स्वायत्त संस्थान विकसित करेगी। और दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि चंद्रावल जल संयंत्र की बैक वॉश लाइन फटने से क्षेत्र में जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि पंप हाउस को फिर से चालू करने में लगभग 3 दिन लग सकते हैं। सिविल लाइन्स हिंदूराव अस्पताल, कमलानगर, शक्तिनगर, करोल बाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र सहित राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इंद्रपुरी, तिमारपुर और मालकागंज के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और टैंकर के लिए बोर्ड से संपर्क करने की सलाह दी है। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और रेनू कटारिया के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो रेनू सबसे पहले आप बताएं चेन्नई का मौसम कैसा है।
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 22 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस।
और रेनो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज मौसम बहुत ही सुहाना है। आज सवेरे हल्की बारिश भी हुई है और अब दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई की बात करें तो आज वहां पर गर्मी रहेगी, अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
जी, एंड मुकेश, टुडे इज नॉट जस्ट अनदर डे, इट इज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ सैक्रिफाइस, करेज एंड एन अनब्रेकेबल स्पिरिट। ऑन this day, March 23rd, India observes Shaheed Diwas, a day dedicated to remembering the extraordinary bravery of 3 young revolutionaries, Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivaram Rajguru. This song that we are listening to beautifully captures the love these heroes had for their motherland. But behind this emotion lies a story that many still find hard to believe.
जी हाँ, 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल की दीवारों के भीतर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। 3 युवा भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु अपनी बहादुरी की कीमत चुकाने वाले थे। वे सिर्फ आम नौजवान नहीं थे, वे उस पीढ़ी का प्रतीक थे जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका अपराध एक स्वतंत्र भारत का सपना देखना था, अन्याय के खिलाफ खड़े होना था और ऐसे समय में देश में उम्मीद की लौ जलाना था जब लोगों का गुलामी के शासन में दम घुट रहा था। सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि उनकी फांसी का समय गुप्त रखा गया। शाम 7:30 बजे आधिकारिक समय से कई घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को डर था कि अगर लोग जमा हो गए तो विद्रोह भड़क सकता है।
ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक वार का सामना.
And even after their execution, the story did not end. In the dead of the night, their bodies were removed under darkness. They were taken to the banks of the Satluj River in Firozpur, where in hurried silence they were cremated. No flowers, no mourning crowds, just shadows and whispers.
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा बागबन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले.
लेकिन भारत के वीर सपूतों का बलिदान रात के अंधेरे में खोया नहीं बल्कि ये पूरे भारत में गूंज उठा गांवों में छात्रों के लेखों में और आम नागरिकों के दिलों में जेलों से लेकर स्कूल कॉलेज तक सड़कों से लेकर गुप्त सभाओं तक उनकी बहादुरी हर जगह एक क्रांति का संदेश बन गई.
वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो
Imagine Bhagat Singh at just 23 years old calmly walking to the gallows, notebook in hand, revolutionary poems in his heart, unshaken by fear. Sukhdev and Rajguru, equally young, equally fearless, embracing their fate with dignity. They had lives waiting for them, families, love, dreams. But they chose the nation, they chose us.
शहीद दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है ये भविष्य को देखने का भी दिन है खुद से पूछने का दिन है क्या हम उनके बलिदान को अपने कर्मों में सम्मान दे रहे हैं क्या हम उन आदर्शों को निभा रहे हैं जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. आज 23 मार्च है और आज ही के दिन 1995 में आज ही के दिन भारत के विश्वनाथन आनंद ने प्रोफेशनल चेस एसोसिएशन कैंडिडेट्स की फाइनल श्रृंखला जीती थी.
In 1757 on this day, British forces led by Robert Clive captured the French settlement of Chandannagar in Bengal, a decisive victory that weakened the French influence in India. And in 1775 on this day, American revolutionary Patrick Henry delivered his famous speech in Virginia, fueling the drive for American independence. And if we talk about 1933, Mukesh, the German Reichstag passed the Enabling Act, which gave Adolf Hitler dictatorial powers and marked the formal end of democracy in Germany. In 1940, the All India Muslim League passed a resolution in Lahore calling for a separate Muslim homeland, which paved the legal and political road toward partition.
1996 में आज ही के दिन ताइवान में पहली बार राष्ट्रपति के लिए सीधे चुनाव संपन्न हुए थे और 2008 की बात करें तो आज ही के दिन भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया और अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों रॉबर्ट वेंकेन और साइक फोरमैन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन की मरम्मत के लिए अंतिम स्पेस वॉक किया और नासा ने पृथ्वी से 7.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुए एक अंतरिक्ष विस्फोट को देखा.
एंड नॉट टू फॉरगेट टुडे मार्च 23rd मार्क्स द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज. द डे कमेमोरेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डे 1950. द थीम फॉर द ईयर ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो फोकसेस ऑन हाउ वेदर ऑब्जर्वेशंस हेल्प सेफगार्ड लाइव्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
और अब उन महान व्यक्तियों को याद कर लेते हैं जिनकी आज है पुण्यतिथि. तो भारतीय सेना में अधिकारी ब्रिगेडियर राय सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है. उन्हें सन 1967 में नाथुला और चोला संघर्ष में अपनी वीरता के लिए जाना जाता है. उन्होंने संघर्षों के दौरान अनुकरणीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया जिसके लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. राय सिंह यादव को नाथुला के बाघ के रूप में भी जाना जाता है.
And today is the death anniversary of Dame Elizabeth Roseman Taylor, who was a British-American actress, businesswoman, and humanitarian. She began her career as a child actress in the early 1940s and was one of the most popular stars of classical Hollywood cinema in the 1950s. And in 1999, the American Film Institute named her the 7th greatest female screen legend. So here, Mukesh, we are going to listen to a dialogue from the movie Cleopatra, where, you know, in the movie, it is a considerable mistake to pretend to have power or even recognition in the presence of real power. And here, Cleopatra, portrayed by Liz Taylor, clearly reveals that she may cut the Roman Empire into pieces should she wish. She merely cuts it into thirds and puts the Roman representatives on his knees. So let's listen into this dialogue.
I do not grant private audiences to unidentified persons.
I am Marcus Antonius.
I know who you are. What are you at the moment?
Envoy of Rome, proconsul of all the Roman Empire to the east of Italy.
An impressive title.
Worthy, perhaps, of a private audience.
Without a treaty of alliance with Egypt, you could not hold the territories under your command. True?
Possibly.
Then, Lord Antony, you come before me as a suppliant.
If you choose to regard me as such.
I do. You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. You will kneel.
I will what?
On your knees.
Dare ask the proconsul of the Roman Empire?
I asked it of Julius Caesar. I demand it of you.
और अब हम याद कर रहे हैं लांस नायक लाला राम को. आज उनकी पुण्यतिथि है. भारतीय थल सेना के 41वें डोगरा में लांस नायक थे लाला राम. उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी. उन्होंने मेसोपोटामिया, जो कि मौजूदा इराक है, वहां पर हन्ना के युद्ध में 21 जनवरी 1916 को बहादुरी की मिसाल कायम की थी, जिसके लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया.
Yes, Mukesh, today we are also remembering Akira Kurosawa, who was a Japanese film director and screenwriter who directed 30 films in a career spanning 57 years. He is regarded as one of the most important and influential filmmakers in the history of cinema. And Akira Kurosawa received an honorary award, 1990 Oscars, by George Lucas and Steven Spielberg, who presented him this Oscar, for accomplishments that have inspired, delighted, and enriched audiences and influenced filmmakers throughout the world. So let's listen into this.
The Academy's Board of Governors has voted an honorary Academy Award to a man who many of us believe is our greatest living filmmaker, and all of us know is one of the few true visionaries ever to work in our medium. Akira Kurosawa has made 27 films in his 47 years as a director, among them such indisputable classics as Rashomon, Akira, Throne of Blood, Seven Samurai, and Ron.
Someone once asked Mr. Kurosawa if his movies have a common theme. His answer was that they ask a common question. Why?
और अब हम याद कर रहे हैं बसंती देवी को, जो भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी और बंगाल के प्रसिद्ध नेता चित्तरंजन दास की पत्नी थी. बसंती देवी 1925 में अपने पति देशबंधु चित्तरंजन दास की निधन के बाद भी बराबर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती रहीं. इसके अलावा आज जयंती है प्रोफेसर आदित्य प्रसाद दास की। उन्होंने वीबीडी में विभिन्न उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, रणनीतियों के विकास में मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आदित्य प्रसाद का जन्म 23 मार्च 1951 को भुवनेश्वर में हुआ था। तो श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम का वक्त यहीं पर समाप्त होता है। तो मुकेश कुमार और रेनु कटारिया को आज का कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात एंड फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।